का अनुभव करता है, पांचों इंद्रियों के विषय का वह चिंतन करता है, इस वास्ते मन एक भी सूक्ष्म ज्योति है, और मन से भी सूक्ष्म ज्योति है बुद्धि ज्योति। बुद्धि जो है वो एक प्रकार से मन से भी सूक्ष्म है, जो मन का भी उसको ज्ञान है कि मेरा मन कलकत्ता चला गया, बंबई चला गया, इस प्रकार से उस बुद्धि से निश्चय किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और बुद्धि की ज्योति से भी और परे की ज्योति जो है आत्म ज्योति है, इस शरीर के हिस्से के बीच में जैसे ज्ञाता ज्ञान के तीन पदार्थ है, जो तो उनको कहते हैं जो जानने में आने वाले पदार्थ है, जितने जो जड़ पदार्थ है ये है, और ज्ञान जो है बुद्धि की वृत्ति है उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञाता जो है चेतन आत्मा है। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच में जो ज्ञान और ज्ञेय तो जड़ है और आत्मा चेतन है, जो ज्ञाता ज्ञान जो त्रिपुटी है उसमें जो आत्मा है ये दृष्टि चेतन है और परमात्मा समष्टि चेतन है, इसलिए वो ज्योतियों का ज्योति है, सर्व का प्रकाश और ज्योतियों का ज्योति। तो वो चेतन है, जड़ नहीं, जानने में आवे वो जड़ है, और जिसके द्वारा जाने जावे वो भी जड़ है, किंतु जानने वाला से चेतन है, ये हमारा शरीर है, ये शरीर से जड़ है। इस शरीर में जितने पदार्थ में बतराए ये सब जड़ है, किंतु इस सब का ज्ञाता चेतन जो आत्मा है वो साक्षी है, दृष्टा है और चेतन है। तो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, ब्रह्म जैसे ज्योतियों का भी ज्योति है, इसका कहता ज्योति सामग्री ज्योति। और तम से परमुचित तम जो अज्ञान है, तम जो अंधकार है, उससे वो पर है, माने विलक्षण है। जैसे एक तो प्रकाश है और एक ज्ञान है और एक चेतन है, नेत्रों का जो विषय है वो प्रकाश, और बुद्धि का जो विषय है वो ज्ञान, और ज्ञाता का जो स्वरूप है वो चेतन। तो इनके बदले में तीन चीज उनकी है कि प्रकाश के बदले में तो अंधकार, उसका प्रतिपक्षी अंधकार, और ज्ञान का प्रतिपक्षी अज्ञान, और चेतन का प्रतिपक्षी जड़। तो जैसे परमात्मा है, ब्रह्म है, तो उस दृष्टि में माया है, तो माया जड़ है और माया के सारे पदार्थ से जड़ है, और ज्ञान का प्रतिबिंब जो है ज्ञान है, तो ज्ञान है तो उस जाति की चीज है चेतन जाति की, और अज्ञान है वो अपने जड़ जाति की चीज है। ऐसे ही जो प्रकाश है उसका प्रतिबिंब है अंधकार है, तो प्रकाश जो है उस जाति की चीज है चेतन जाति की, और अंधकार जो है तो जड़ जाति की चीज है। इसलिए प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति का जो कार्य जो है, प्रकृति का कार्य जो अज्ञान और अंधकार ये सब जड़ है, और ये भी सब जड़ है, जो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, ये भी सब जड़ है। चेतन तो केवल आत्मा है और वो प्रत्यक्ष है। आपके सम्मुख जितने पदार्थ देखने में आते हैं, समझने में आते हैं, ये सब ऐसे जड़ है, और इन सबको समझने वाला है वो चेतन है। तो देह के भीतर के वहां जो चेतन है ये दृष्टि है, और परमात्मा जो है वो समष्टि चेतन है। जैसे एक घड़ा है और घड़े के भीतर का जो आकाश है वो दृष्टि आकाश है, और ये फैला हुआ जो आकाश है महाकाश ये समष्टि आकाश है। तो परमात्मा तो समष्टि आकाश की जीव है और जीवात्मा दृष्टि आकाश की जीव है, और अज्ञान जो है वो ग्रह के जीव है। जब ग्रह फूट जाता है तो दृष्टि आकाश समष्टि आकाश में एक ही हो जाता है। इसी प्रकार से जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो दृष्टि चेतन और समष्टि चेतन एक ही हो जाते हैं, ये ब्रह्म की प्राप्ति। अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, और वो ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो साधनों से। तो बहुत से साधन बतलाए हैं, ज्ञान का खुद भी साधन है और ईश्वर की भक्ति करने से भी ज्ञान होता है, श्रद्धा से भी ज्ञान होता है, और महापुरुषों की कृपा से भी ज्ञान होता है। हमारे ईश्वर की कृपा से तो होता ही है, तो इसके लिए ये सब बहुत से उपाय बतलाए हैं। और निष्काम कर्म से जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उससे भी ज्ञान होता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से हो ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के उत्पन्न होने से ही अज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे रात्रि के मां निद्रा आ रही है और निद्रा के भंग होने से ही सिंधु की जागृत अवस्था हो जाती है, तो स्वप्न की संसार जागने के साथ ही उससे स्वप्न की संसार का अभाव हो जाता है, फिर स्वप्न की संसार की प्रतीति ऐसे नहीं होती। जागने के बाद क्यों तो स्वप्न की संसार ऐसे नहीं है, तो ज्ञान होने के बाद में फिर अज्ञान नहीं रहता, और अज्ञान का नाश होने के बाद में केवल एक परमात्मा ही रह जाता है। उस परमात्मा का स्वरूप है स्वचित आनंद घन। ज्ञान की प्राप्ति के बहुत से उपाय है, उन्हें मैं आपको कुछ बताता हूं। एक तो ईश्वर की भक्ति है। भगवान कहते हैं गीता की 10वें अध्याय के 10 श्लोक में, तेषां सतत युगतानां भगतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन नाम जानन्ति। जो प्रीति पूर्वक नित्य निरंतर जो उनको रहते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, तो जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गीता की अध्याय 10 और शुरू तक। और सर्वासक्ति ज्ञान उत्पन्न होता है कि सर्वान वर्ते ज्ञान तत्पर संगति में यह, और ज्ञान लब्धा परांग शांति न केवनादि गच्छति। सर्वान जो पुरुष है परमात्मा में जिसका विश्वास है, महात्माओं में जिनका विश्वास है, ईश्वर में जिनका विश्वास है, और शास्त्रों में विश्वास है, परलोक में विश्वास है, अपनी आत्मा में विश्वास है, माने विश्वास का नाम श्रद्धा है। और आदर पूर्वक जो विश्वास है, पूज्य भाव को लेकर के जो विश्वास है, भक्ति भाव को लेकर के जो विश्वास है, उसका नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा से की ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कैसी श्रद्धा? कि जिस श्रद्धा का फल है कि साधन में तत्पर हो, तत्पर माने तत्पर का कहना यह अभिप्राय है कि जितनी तत्परता है उतनी श्रद्धा समझी जाती है। तत्परता एक कसौटी है श्रद्धा की, और संगति इंद्रिय और इंद्रिया उसके बस में हो जाती है। इंद्रिया और मन को जितनी संयम है उतनी साधन तेज समझी जा रहा है। मन और इंद्रिया जितना बस में हो गया उतनी साधन तेज है, और जितना साधन तेज है उतनी उसकी श्रद्धा है। जब श्रद्धा पूर्ण हो जाती है तो संगीति उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान लगवा परम शांति, ज्ञान को पाकर के परम शांति को अचेन अधिगति मैंने शीघ्र उसको प्राप्त पा लेता है, विघ्न का काम नहीं है। तो श्रद्धा स्थिति ज्ञान मिल जाता है। और महात्माओं के पास जाकर के और उनकी शरण होने से भी ज्ञान मिल जाता है। सर्वनाम लगते ज्ञान, ये कौन सा कहां का श्लोक है? तो गीता की 4 अध्याय का 39 का श्लोक है। अब महात्माओं के पास जाकर ज्ञान सीखने की बात बतलाई जाती है, वो 4 अध्याय का 34 का श्लोक है। वो इस प्रकार है, तद विद्धि प्रणिपाते नो परिप्रश्न सेविया उपदेश समिति के ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न तत्म। उस ज्ञान को तुम ज्ञान तत् विद्धि में उस ज्ञान को तू जान, किस प्रकार से जानो? साष्टांग नमस्कार करके उन ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के, अब उनको साष्टांग नमस्कार करके और उनकी सेवा कर करके और उन्हें से प्रसन्न कर करके कि उस ज्ञान को तू जान। और वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे, उस ज्ञान से फिर कभी तुम्हों को प्राप्त नहीं होगा और संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने आत्मा के अंदर देखेगा, उसके बाद में परमात्मा के अंदर देखेगा, मुझ परमात्मा के अंदर देखेगा। ये बात आपने बतलाई, यज्ञातवाणी पुनर्मो है एवं यासी पांडव है ये नूताने शेषणे दृष्टि आत्मनि अथो मई। तो ये एक प्रकार से थी, ज्ञानी तुम्हारे को ज्ञान देंगे और उस ज्ञान के द्वारा तू उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करेगा, पहले आत्मा का और फिर परमात्मा का। और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए और भी बहुत से उपाय बतलाए, निष्काम कर्म के साधन से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, मनुष्य कर्म करता है निष्काम भाव से, उससे अंतकर्म की शुद्धि होती है, उससे ज्ञान मिल जाता है। इसके लिए भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 38 के श्लोक में कहा, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध काले नींदते, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र विद्यते, संसार के मां ज्ञान के समान कोई पवित्र पदार्थ नहीं है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध काले नींदती, कालीन योग संसिद्ध हुआ पुरुष समय करके के साधन करते करते जिसका अंतकरण शुद्ध हुआ है, ऐसा पुरुष उस ज्ञान को अपनी आत्मा के अंदर स्वयं आप ही अपने पा लेता है, यानी उस ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है अंतकरण शुद्ध होने से। और वो अंतकरण की शुद्धि जो है निष्काम कर्म योग के द्वारा होती है, मनुष्य कर्म तो करता है किंतु उसका फल नहीं चाहता, उसमें आशक नहीं होता, उसका नाम है निष्काम भाव। उसको खुलास करके बताया है गीता में ग्रहण ग्रहण, तो उसे ज्ञान की उत्पत्ति होकर के और उसको परम शांति मिल जाती है। तो ज्ञान के लिए बहुत से उपाय बतलाए गीता की 13वीं अध्याय के मां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक जो बहुत से साधन बताए हैं, बहुत से साधनों का समूह, उसका नाम ज्ञान कहा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से उनका नाम ज्ञान कहा। एक ज्ञान नीति प्रोक्त है ज्ञान जगत तो अन्य था, ये 13वीं अध्याय 11 के श्लोक का पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध। तो ये तुम्हारे को ज्ञान की व्याख्या कही गई, ऐसे विपरीत ये ज्ञान है। तो यहाँ से शुरू किया कि अमानित गंभीर, तो ये आप पुस्तक में देख सकते हैं गीता की पुस्तक के बीच के मां, और विस्तार के साथ तत्व बीच में इसका भाव दिखलाया गया। ये गोरखपुर से निकली है 4 की हमारी गीता। अब ज्ञान की प्राप्ति के उपाय आपको बहुत से बतलाए, और परमात्मा के विषय में बताया कि वो परमात्मा का स्वरूप सचित आनंद घन है। अब ये बतलाया जाता है कि आनंद घन से हम समझे नहीं, आनंद घन से ये समझना चाहिए कि आनंद ही आनंद, आनंद के सिवा और दूसरी वस्तु है ही नहीं। घन माने गहरा परचूर, ये सब घन के पर्याय है। जैसे बर्फ का ढेला है तो उसमें जल ही जल है, उसको कहते हैं कि जल घन है। जैसे कोई एक प्रकार से थी पत्थर है, शिला है, तो ये कहते हैं ये पत्थर घन है, तो वो जड़ पदार्थ है। और ये चेतन घन है, चेतन जिसे देह के मां जो आत्मा है वो उसकी इतनी घनता है, इसके सिवा और दूसरी कोई वस्तु नहीं। ये हमारा शरीर है, घन नहीं है, इसमें पेड़ है, इसमें अग्नि प्रवेश कर सके, इसमें जल प्रवेश कर सके, वायु प्रवेश कर सके, इसमें पेड़ है, घनता नहीं। हमारी इंद्रियां है, इसमें भी पेड़ है, इंद्रियों के जो विषय है वो इसमें प्रवेश कर जाते हैं, शब्द सप्रस रस गंध आदि। हमारा जो मन है इसके वहां सुंदर की संकल्प आदि से प्रवेश कर जाते हैं। हमारी जो बुद्धि है इनके बीच के वहां इंद्र की बहुत से पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, विद्या जो है, ज्ञान जो है, निश्चय जो है, ये सब, किंतु हमारी जो आत्मा है उसके वहां प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ हम हैं तो वहां हम ही हैं, और दूसरा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा कोई भी योगी है तो कोई देवता है कोई भी प्रवेश करे तो हमारे शरीर में कर सके, हमारे मन बुद्धि में कर सके, किंतु हमारी आत्मा में गुंजाइश नहीं है कि वो ठोस है, घन है, प्रचुर है। तो इस प्रकार से कि जो आनंद ही आनंद है, जो लौकिक आनंद है वो उससे विलक्षण है। जिस आनंद को मनुष्य बुद्धि के द्वारा जानता है वो आनंद जड़ है, और जो आनंद स्वयं सबका ज्ञाता है वो चेतन है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा सबका ज्ञाता है, सबका साक्षी है, चेतन है। ये सारी संसार उस परमात्मा की संकल्पना है, और संकल्प को छोड़ देगा तो केवल परमात्मा ही हो जाता है। तो वो जो परमात्मा का स्वरूप है वो चेतन है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान परमात्मा को है, या यूं कहो कि वो परमात्मा चिन्मय स्वरूप है। तो चेतन है वो आनंद है, आनंद वो चेतन है। आनंद और चेतन दो पदार्थ नहीं है। प्रकृति का कार्य रूप जो आनंद है, बोध है, वो अलग अलग चीज है। जैसे बुद्धि का जो कार्य है, विकार है, उसको हम अपने ज्ञान कहते हैं, और सात्विक जो सुख है, सुख सात्विक राशि काम से उसमें सात्विक सुख श्रेष्ठ है, किंतु वो सात्विक सुख भी जड़ है। पुरुष उसका जाता है, भोगता है, पर वो भोग होने से जड़ है, जो होने से जड़ है। परमात्मा किसी का विषय नहीं होता, इसलिए वो चेतन है। चेतन किसी का विषय होता ही नहीं। मेरे भीतर में जो मेरी आत्मा है उसको आप नहीं जान सकते, मेरे शरीर को आप जान सकते हैं। जब भी आप योगी हो तो मेरे मन में प्रवेश करके मेरे मन की बात को भी आप जान सकते हैं, किंतु मेरी आत्मा में आप प्रवेश नहीं कर सकते। आत्मा घन है, तो वो कैसा आनंद है कि बस एक अणु ही आनंद है, और उस अणु का अंग है जिस अणु को खुद को ही है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसे जाना जाए कि जब परमात्मा ही बन जाए, मनुष्य जब साधनों के द्वारा परमात्मा ही बन जाए तो परमात्मा खुद अपने आप को जानता ही है। तो इस वास्ते परमात्मा चेतन है, आनंद स्वरूप है। विज्ञान आनंद घन ब्रह्म, ब्रह्म जो है विज्ञान स्वरूप और आनंद घन स्वरूप है, और वो है, इसलिए उसको सत कहते हैं। सत कोई अलग पदार्थ नहीं है। भगवान को कायम करने के लिए, भगवान को अस्तित्व बतलाने के लिए कहने की वो सत है। तो साधन काल के मध्य परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है वो तो बुद्धि ग्राह्य बताया गया है। हाँ, वो साधन काल का जो परमात्मा का स्वरूप है उसको ज्ञेय कहा गया, और उसका जो फल है उसको मृत कहा गया। भगवान ने गीता की 13वीं अध्याय के और 12 के श्लोक में यह बात कही कि वेदम यत तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमस्मिते। अर्जुन, मैं तुम्हारे को वेद जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है, बुद्धि के द्वारा जो जान जा सके उसको मैं कहूंगा, और जिसको तू जान करके फिर अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो अमृत क्या है? वो निर्विशेष ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, वो सब साधुओं का फल है। अनादिमत परम ब्रह्म न सप्तम न सद्विचते, उसको अनादि कहते हैं और परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म तो समझो और चीजों का भी नाम होता है, ब्रह्म का नाम भी, ब्रह्म को भी ब्रह्म कहते हैं, वेदों को भी ब्रह्म कहते हैं, किंतु परम ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, दूसरी चीज को नहीं कहते। इस बात से उसका नाम है परम ब्रह्म। और इसी प्रकार से वो कहा नहीं जा सकता, उसका स्वरूप जो निर्विशेष है, जो जिसका नाम यहाँ अमृत बतलाया है, जिसका कहीं तो निर्वाण ब्रह्म के नाम से कहा है, जिसको निर्वाण ब्रह्म के नाम से कहा है, इसको सत्सर से या असत्सर से नहीं कहा जा सकता। असत्सर से नहीं कहा जा सकता कि वो है वास्तव में, और सब समय से इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जिस सत्य के उच्चारण करने से जो मनुष्य के हृदय में भाव आता है वो जड़ सता है, इसलिए उससे विरक्षण है। आपने दो बात मानी, एक सत एक असत। सत के विषय में कहा कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावो न विद्यते। सत का कभी अभाव नहीं होता, जो सदा चीज कायम रहा वो सत है, और जो सत वस्तु उसका तो अभाव नहीं होता, और जो मिथ्या जो वस्तु है वो आपने कायम नहीं होती, तो मिथ्या मिथ्या ही रहती है। ठीक है, अब सत और असत्य ये दोनों बात आप समझ गए बोले समझ गए। जब समझ गए तो ये समझ में आने वाला आपका जो सत और असत है ये दोनों ऐसे जड़ है जो तुम्हारी बुद्धि के समझ में दोनों आ गए। तो ये समझना चाहिए कि वो सत असत से जो परे है वो एक प्रकार से बुद्धि के समझ में नहीं आता, वो सब साधनों का फल है। तो सब साधनों का जो फल है इसको वो ज्ञानी महात्मा प्राप्त है, किंतु साधक आदमी के लिए तो वही स्वरूप है कि जिसको सच्चिदानंद के नाम से कहा गया है। अरे सच्चिदानंद की ऐसी व्याख्या जो आपने बतलाई उसको ढेर बना करके ध्यान करने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रकृष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय के बीच में किस प्रकार से थी उसका हम ध्यान करें। तो अब आपको बताया जाता है कि आपकी आयु भर के मां अधिक से अधिक कभी आपको आनंद हुआ होगा। सात्विक आनंद, सात्विक आनंद उसको कहते हैं जो ईश्वर की भक्ति से या वैराग से जो सुख होता है, या सत्संग से जो सुख होता है, या ईश्वर की प्राप्ति विशेष जो शास्त्र है उसके अध्ययन से जो सुख होता है, या जिसके मन वैराग होने से जो सुख होता है, या ईश्वर की भक्ति से जो सुख होता है, इस प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति के जो उपाय बतलाए हैं, साधन बतलाए हैं, उसके द्वारा जो सुख है वो सात्विक सुख है। और इंद्रियां और विषयों के संयोग से जो सुख होता है वो राजसी है, और आलस्य प्रमाद और निद्रा से जो सुख होता है वो तामसी है। तो इनमें सात्विक सुख सबसे श्रेष्ठ है। तो सात्विक सुख जो है उसका दायरा भी बड़ा है, ऐसा कभी होता ही है मनुष्य को अपने जीवन के बीच के में ज्ञान से, वैराग से, ईश्वर की भक्ति से, सब पुरुषों के संग से और सत्शास्त्र के अभ्यास से जो सुख मिलता है वो है सात्विक सुख। वो सात्विक सुख जो आपको हुआ उसको एक समझना चाहिए, वो भी अलग है। ऐसा सुख महान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जैसे आकाश की सीमा नहीं, ऐसा जो महान जो आनंद है उस आनंद के सागर के वहां समझो कि अपने मगन हो जावे, उसमें प्रवेश कर जावे, उसमें डूब जावे, यानी अपने चारों तरफ बार भीतर आनंद ही आनंद है ऐसा अनुभव करे। जैसे आकाश के वहां बादल है तो उसके बाहर और भीतर में आकाश व्यापक है, आकाश उस बादल के भीतर में भी है बाहर में भी है, इस प्रकार से वो आनंद में परमात्मा इस शरीर के बाहर भी है भीतर भी है, मन में बुद्धि में इंद्रियों में रोम रोम के मां सब जगह वो आनंद एकदम परिपूर्ण हो रहा है। जैसे बर्फ के ढेले के बीच में जड़ ऐसे भरा हुआ है, जड़ी जड़ उसके बीच के मां ऐसे एक आनंद ही आनंद है। बर्फ के ढेले को यदि सागर में गिर दिया जाए तो आनंद सागर में गिर दिया जाए तो वो सागर है, जड़ का सागर है, और बर्फ का ढेला वो भी जड़ है, और वो सागर के मां पड़ा हुआ उससे अलग है ढेले की जो है, जल वो पानी की जो है, किंतु जाति से एक ही चीज है। वो जल का माने वो बर्फ का ढेला जल में रहते रहते गल जाता है तो वो देह बन जाता है। तो इस प्रकार से जो अपना जो शरीर है ये बर्फ के ढेले की जो और परमात्मा है वो सागर की जो, तो जल का जो सागर है वो जड़ है और वो आकार वाला है, वो एक प्रकार से स्थूल है, और ये सूक्ष्म है, ये निराकार है, वो आनंद का कोई आकार नहीं होता। तो ऐसा जो अनंत ऐसी जो आनंद है ऐसे आनंद के बीच के वहां अपने मन हो जाए और वो आनंद अपने बाहर भीतर नीचे ऊपर सब गुणों एकदम परिपूर्ण हो रहा है। आनंद शब्द के उच्चारण करने से भी शरीर के वहां आनंद की जागृति हो जाती है और आनंद एक लहर होने लगती है और रोमांच होने लगते हैं। आनंद के उच्चारण करने से आनंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसा भी ये आनंद है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से उस परमात्मा के अनुमय स्वयं का ध्यान करे। जब एक भाई भगवान के स्वरूप साकार का ध्यान करता है, विष्णु का ध्यान करता है, तो उसको विष्णु की प्राप्ति हो जाती है, जैसे ध्रुव जी को हुई। तो इसी प्रकार से उस निर्गुण निराकार का ध्यान करने से उस निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें साधन के मां भी बड़ा भारी आनंद है, बड़ा भारी आनंद है, किंतु वो है इसे जैसे अलग होकर के उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होने से मैं शरीर हूं या ये शरीर वाला मैं हूं, ये जब तक ज्ञान हो जाता तब तक उस आनंद का अनुभव नहीं होता। उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर के एक प्रकार से जब उस ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करता है तब ऐसा मालूम देता है। सुखी न ब्रह्म संस्पर्श है मतम तम सुख में स्मृति कहा है अकंक जो सुख है, ब्रह्म प्राप्ति रूप जो अकंक सुख है, वो सुख पूर्व की उसको प्राप्त हो जाता है, कोई इसमें क्लेश नहीं, परिश्रम नहीं। तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि एक उस ज्ञान आनंद के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। वो आनंद जो है वो चेतन आनंद है, उस आनंद को अपने आप को ज्ञान है, ऐसा स्वयं आनंद स्वरूप बनकर के जब अनुभव करता है तो वह न शरीर है न संसार है, तो एक विज्ञान धन है, वो निराकार है, वो अनंत है, ऐसी है, वो अपने आप करके परिपूर्ण है। इस वास्ते उसको पूर्ण आनंद कहते हैं और इसकी सीमा नहीं है, इसलिए उसको अपार आनंद कहते हैं। और वो इसका शांति स्वरूप है, शांति की भी वहां सीमा नहीं रहती, इस वास्ते उसको शांत आनंद कहते हैं। और वो प्रचुर है, इस वास्ते उसको घन आनंद कहते हैं। और देश और काल करके कभी उसका विनाश नहीं होता और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता नहीं, इस वास्ते उसको अचल आनंद कहते हैं, ध्रुव आनंद कहते हैं। उसका अभाव नहीं होता, इस वास्ते उसको नित्य आनंद कहते हैं, सत्य आनंद कहते हैं। और उसका अनुभव उसको आपको है, इसलिए उसको बोध स्वरूप आनंद कहते हैं। उससे बड़े रूप में आनंद नहीं है, इस वास्ते उसको परमानंद कहते हैं। उससे और कोई बड़ा नहीं है, इस वास्ते उसको महानंद कहते हैं। उसका कभी अंत नहीं होता है, इस वास्ते उसको अनंत आनंद कहते हैं। उसको कोई चिंतन नहीं कर सकता, उसको अपने आप का आपको ही ज्ञान है, इस वास्ते उसको अचिंत आनंद कहते हैं। ऐसा जो अलौकिक आनंद है, उस आनंद के स्वरूप का हर वक्त अनुभव करना। देखो प्रत्यक्ष के बीच के वहां वो आनंद ऐसे प्राप्त है, आनंद के अतिरिक्त और जो ये संसार है ये तो वास्तव में है नहीं, ये तो उसमें कल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्नावस्था के बीच में स्वप्न की संसार हमारे को सत्य दिखती है, स्वप्न काल के वहां सत्य दिखती है, किंतु जब हमारी आंखें खुल जाती है तब वो संसार एक प्रकार से मिथ्या हो जाती है। हम जाकर के कहते हैं कि वो तो स्वप्न था, वो तो कल्पना मात्र थी, हमारे मन का संकल्प था और कुछ भी नहीं था।